ओम शांति। बाबा के इस डायमंड हॉल में विशेषता है कि वर्ष में कितने ही जोन के भाई बहन यहां इकट्ठे होते हैं और प्यारे बाबा ने हर जोन की विशेषता कई बार अपने मुरलियों में बताई है। तो आज कल पहले की तरह ना सिर्फ एक कल पहले की तरह बल्कि अनगिनत बार के कल्पों के पहले की तरह फिर 5000 वर्ष के बाद महाराष्ट्र जोन इस डायमंड हॉल में इकट्ठा हुआ है। तो अपने लिए प्यार से जोरदार ताली बजाइए। अब महाराष्ट्र जोन कितना बड़ा है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि भारत एक राष्ट्र है, भारत सारा विश्व होता था सतयुग में, सारे विश्व का नाम भारत था। अब धीरे धीरे कटते कटते छोटा होते 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 आज भारत एक राष्ट्र है। अब राष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र, इसका क्या अर्थ हुआ? तो जरूर इसका अर्थ कोई एरिया से नहीं है, इसका अर्थ है कि अवश्य ही उसके अंदर, महाराष्ट्र के अंदर महान आत्माएं रहती हैं, तभी इसका नाम महाराष्ट्र है। जैसे पहले कहते थे, स्लोगन होता था मेरा भारत महान, हर जगह लिखा होता था स्कूटर के पीछे ट्रक के पीछे मेरा भारत महान। तो मेरा भारत महान धरती से था या महान आत्माओं के कारण से, क्योंकि सारे विश्व में आज भी भारत को आध्यात्मिक तौर पे महान देश गिनते हैं। जैसे हम कहते हैं भारत माता की जय, तो दुनिया वाले समझते हैं धरती माता को कह रहे हैं, पर बाबा कहते हैं मैंने माताओं को इतना महान बनाया, इस कारण से भारत माताओं की जय है। तो ठीक इसी प्रकार से जरूर पहले समय से लेकर अब तक आत्माओं ने अपने देश को, अपने प्रांत को, प्रांतों को और अपने आप को महान रखा, इसलिए अन्य अन्य स्टेट्स के कुछ भी नाम हो पर आपकी स्टेट का नाम तो महाराष्ट्र है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, इससे ही महानता अपने आप भूल ही नहीं सकती है ना। तो आप देखो बाबा के आज महाराष्ट्र के बच्चे इकट्ठे हुए। अब रही बात कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे, ब्रह्मा बाबा क्या उनका पुरुषार्थ था, तो सारी दुनिया के अंदर दो ऐसी हस्तियां हैं, दो ऐसे अस्तित्व हैं जिनको सारी दुनिया की आत्माएं महान से महान और सर्व महान मानते हैं। और वो दो हस्तियां कौन हैं? एक तो परम पिता परमात्मा है। सारी दुनिया की आत्माएं गॉड इज सुप्रीम कहती हैं। सभी धर्मों वाले परमात्मा को परम पिता कहते हैं, और जो नहीं भगवान को मानते या भूले हुए हैं, वो भी कभी ना कभी उनके मुंह से निकल जाता है, ओ गॉड, हे परमपिता परमात्मा। तो ऊंचे से ऊंचा सारे विश्व में केवल और केवल वन गॉड, एक परमात्मा को मानते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब उससे नेक्स्ट, उसके बाद सारे विश्व की आत्माएं अगर किसी को अपना पूर्वज मानते हैं, अपना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मानते हैं, तो वो शारीरिक तौर पर शरीरधारियों की दुनिया में, इस साकार लोक में, सर्व आत्माओं के पिता, शरीरधारी आत्माओं के पिता ब्रह्मा बाबा को मानते हैं। आप देखेंगे हमारे बाबा को क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं, हमारे ही बाबा को मुस्लिम धर्म वाले आदम या बाबा आदम कहते हैं, भारतवासी उनको ब्रह्मा कहते हैं, कई नामों से उनको याद किया जाता है, लेकिन हैं वो सबके एंसेस्टर, या जिसको प्रथम पुरुष कह सकते हैं, शरीरधारियों में सबसे ऊंची आत्मा वो प्रजापिता ब्रह्मा की है। और क्योंकि एक सुप्रीम है और एक नेक्स्ट टू सुप्रीम है, तो दोनों आपस में बहुत घनिष्ठता से कनेक्टेड हैं। और हमें तो बाबा ने बताया कि अब वो दोनों सेपरेट हो ही नहीं सकते, बाप और दादा। अब ब्रह्मा जी साधारण पुरुष थे, जब से उनका नाम ब्रह्मा पड़ा, उससे पहले इस जन्म में भी वो एक साधारण मनुष्य थे, किंतु साधारण मनुष्य नहीं थे, वो साधारण से असाधारण बन गए। और उनके साथ साथ हम बच्चे भी साधारण थे। आज भी दुनिया की नजर में आप और हम साधारण ही है ना, लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा जैसे साधारणता में महानता, गोदड़ी में लाल जिसको कहा जाता है, बन गए, तो बाबा के बच्चे भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, बाबा कहता कोई साधारण बात नहीं है। हमेशा आप साधारण हैं, लेकिन अंदर से बाबा के बच्चे से महान कोई होता ही नहीं है। ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे हैं। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का अर्थ है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का तो यादगारी चोटी दिखाया जाता है, और चोटी से ऊंची चीज तो कुछ होती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आज हम बच्चे अपने उस आदि पिता, कल उनका स्मृति दिवस है, उनकी स्मृति में बैठ करके अपने उस आदि पिता को याद कर रहे हैं कि कैसे थे हमारे बाबा। अब आप देखिए कि अनेक जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में ब्रह्मा बाबा बनते हैं। अब दुनिया वाले तो ना अनेक जन्मों को जानते हैं, ना ये जानते हैं कि अनेक जन्मों के अंत का क्या अर्थ होता है, और अनेक जन्मों के अंत के भी अंत का क्या अर्थ होता है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, सारे वर्ल्ड की और सारे ब्रह्मांड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी चुटकी में सिखा दी। किसी भी ब्राह्मण से पूछोगे तो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी को वो ऐसे बताएंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि वर्ष एक से लेकर वर्ष 1250 तक क्या हुआ, वर्ष 1250 से लेकर 2500 तक क्या हुआ, पूरा बताएंगे। और आप जानते हैं हिस्ट्री का अर्थ होता है समय, समय के अनुसार इतिहास बताता है पहले क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था। और ज्योग्राफी का अर्थ होता है स्थान कि इस जगह क्या है, इस जगह क्या है, इस जगह क्या है। तो बाबा ने स्थान में तीनों लोक, साकार लोक, सूक्ष्म लोक, निराकार लोक, और समय में तीन काल, आदि काल, मध्य काल, अंत काल, बच्चों को चुटकी में सिखा दिया। तो सारे बाबा के बच्चे, अगर सारे विश्व में किसी को ज्ञान है, जिसको आत्मा का ज्ञान कहते हैं, परमात्मा का ज्ञान कहते हैं, रचेता का ज्ञान कहते हैं, रचना का, तो बच्चों को है। कोई भी बाबा का बच्चा, जैसे जादूगर के आगे एक गोला होता है, उस पर जादूगर छड़ी घुमाता है, तो कोई भी सीन जादूगर को पता लग जाता कि वो व्यक्ति जो भाग गया था कहां पर है। इसी प्रकार से बाबा के बच्चों को, हर एक को जादूगर का बच्चा, छोटा जादूगर, और हर बात का पता रहता है किस समय क्या हो रहा। और सबसे ज्यादा, वैसे तो बाबा कहते हैं रावण भी शक्तिवान है, भगवान तो सर्वशक्तिवान है, प्रकृति भी शक्तिवान है, और सभी अनादि हैं, लेकिन बाबा कहता है अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिवान कौन है, शक्तिवानों में भी सबसे शक्तिवान है समय। किसी को समय का पता लग जाए, लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं अपना फ्यूचर जानने के लिए, तो बाबा कहता है कि बाबा के बच्चों के तो फ्यूचर से ही दुनिया को उनका फ्यूचर दिख जाता है, जैसे आईना कोई देख ले। तो इस प्रकार से बच्चों को बाबा ने सबसे बड़ी जो ज्ञान दिया है, सबसे बड़ा, वो समय का है। और हम दुनिया को भी कहते हैं जागो जागो, समय पहचानो, जागने का समय है, जो जागत है सो पावत है, रोज गीत बजता है, जो सोवत है सो खोवत है। अब समय के ज्ञान में क्या आता है कि हमारा ये जन्म और ब्रह्मा बाबा का भी ये जन्म अनेक जन्मों के, अर्थात मैक्सिमम 84 जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म था, हमारा है, ब्रह्मा बाबा का था। अब अंत में जाके ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, क्योंकि हम सबको भी क्या समझना चाहिए, हमारा अंत कब आएगा। वैसे तो कहा जाता है, उर्दू में कहते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, बशर मैंने इंसान, आगाह मैंने जानने वाला, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के पल की खबर नहीं। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा हुआ है, और हमारी मातेश्वरी जी ने भी वही फार्मूला लगाया, बड़ी दीदी ने भी वही फार्मूला लगाया, अब ब्रह्मा बाबा ने तो लगाया ही पहले दिन से, क्या कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। अब घर जाना है, जो कल करना सो आज करो, जो आज करना सो अब करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमको जुबानी याद है अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका अर्थ क्या है कि संगम युग हमारा हर एक का ड्रामा अनुसार फिक्स है, जैसे ड्रामा फिक्स है संगम युग भी फिक्स है। अब कल तक हमारी रुक्मणी दादी, जो 5 बची हुई दादियों में से एक थी, और हम दिल्ली से कल शाम को आए थे और सोचा था कि सुबह जाकर रुक्मणी दादी को हॉस्पिटल में मिलेंगे, लेकिन रात को ही 12:25 पर बाबा ने रुक्मिणी दादी को अपनी गोद में ले लिया। किसी भी जोन में बड़ी दादी नहीं बची थी, दिल्ली जोन में दो बची थी, एक तो थी कमलमणि दादी और रुक्मिणी दादी। गुलजार दादी इंडिया की भी है और दिल्ली की भी है, तो दोनों दादियां चली गई। अब केवल और केवल दादियां माउंट आबू में रह गई हैं। हमारे यज्ञ में ही चार दादियां हैं और यज्ञ वैसे का वैसे ही फलीभूत चल रहा है। बाबा की कमाल है कि कहां इतनी दादियों से यज्ञ चलता था, अब चार दादियां हैं। आदरणीय जानकी दादी जी, आदरणीय गुलजार दादी जी, आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी और आदरणीय ईशुद, सभी मधुबन की ही हैं। देखो बाबा की कमाल, सर्वशक्तिवान है, कितनी प्रफुल्लता से यज्ञ हरा भरा चल रहा। तो रुक्मिणी दादी जी के लिए तो संगम युग समाप्त हो गया, रात को ही हुआ है, और हमारे लिए भी कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए आज का जो टॉपिक है ब्रह्मा बाबा का अंतिम पुरुषार्थ, वो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा भी, क्योंकि हमने बाप समान सब कुछ करना है, तो हमारा अंतिम पुरुषार्थ भी बाप के समान होना चाहिए। हमारा भी कभी भी संगम युग पूरा होके हम एडवांस पार्टी में जा सकते हैं। तो देखना यह है कि प्यारे ब्रह्मा बाबा ने अंत में क्या किया और प्यारे ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति क्या थी और उस स्थिति तक वो कैसे पहुंचे, जबकि हमको भी अपनी अपनी उस स्थिति तक पहुंचना है। अगर हमारा पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा के अंतिम पुरुषार्थ के समान होगा तभी हम बाप समान कहलाएंगे, नहीं तो बाप का पुरुषार्थ कुछ, बच्चे का पुरुषार्थ कुछ फर्क पड़ जाएगा। जैसे शेर होता है, अब शेर को कहते हैं जंगल का राजा, शेर किसी से नहीं डरता और सभी शेर से डरते हैं और शेर को सिंह भी कहते हैं। तो अगर किसी को सतयुग में महाराजा महारानी का पद लेना हो या चलो राजा रानी का भी पद लेना हो तो उसको कहां बैठना पड़ेगा, सिंह आसन पर, अर्थात शेर के ऊपर सवारी करनी पड़ेगी। उसको भी उसी प्रकार से निर्भय होना पड़ेगा, हिम्मतवान होना पड़ेगा। इंग्लिश में कहते भी हैं कि परमात्मा किसकी मदद करता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड ऑलवेज इज विद द करेजियस। तो पहली बात तो हम निर्भय, और निर्भय ज्ञानी ही हो सकता है जिसको सच सब चीज का पता है, यहां तक कि राजा की जो कुर्सी है उसको भी सिंहासन कहते हैं। सिंह के ऊपर बैठने वाला ही इतना सर्वशक्तिवान ही कंप्लीट, जिसको कहते हैं सर्व शक्तियों से भरपूर ही महाराजा की सिंह आसन पर बैठ सकता है। और उसकी निशानी क्या दिखाई है, दुर्गा देवी, कि देखो दुर्गा शेर के ऊपर बैठी हैं तो शेर से भी ज्यादा पावरफुल हो गई। तो बाबा शक्ति का मिसाल देना हो तो दुर्गा जी कह दिया जाता है और दुर्गा माता है। तो बाबा कहता है जो बाबा के बच्चे हैं वो सब शक्ति अवतार है, चाहे वो पुरुष के रूप में पांडव हैं, चाहे वो बहन के रूप में स्त्री हैं। तो पहली बात सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान। अब ब्रह्मा बाबा ने आपको पता है खुद ही 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने शरीर को चोला बदल करके अव्यक्त हो गए। क्यों अव्यक्त हुए, कि ब्रह्मा बाबा को ये ख्याल आता था कि मैं बेहद का सारे विश्व की आत्माओं का आदि पिता, तो मुझे तो अपना सारा ही टाइम सेवा में लगाना है, बच्चों की चेंज करना है, परिवर्तन करना है, और मैं अपने शरीर पर भी क्यों अपना थोड़ा सा टाइम खर्च करूं? आखिर शरीर को स्नान करवाना होता है, भोजन करवाना होता है, शरीर का बंधन तो है ना। मान लो ब्रह्मा बाबा को कहीं जाना है तो शरीर के साथ जाएगा तो कई टाइम लगता है। तो ब्रह्मा बाबा ने इसलिए ऐसी पुरुषार्थ किया, ऐसी तपस्या की, ऐसा त्याग किया, ऐसी सेवा की कि एक ही आत्मा दुनिया में ऐसी है जो शरीर को त्याग कर भी सूक्ष्म शरीर द्वारा 50 वर्ष हो गए सेवा कर रही। इतनी सेवा ब्रह्मा बाबा ने साकार शरीर द्वारा नहीं की, जितनी सूक्ष्म शरीर द्वारा की है। और कितनी रचना, जो कहते हैं ब्रह्मा भगवान ने ब्रह्मा द्वारा संकल्प से सृष्टि रची, कितनी अधिक रचना सूक्ष्म शरीर द्वारा की है। सारे विदेशों के सेंटर बाबा के सूक्ष्म शरीर द्वारा संकल्प से खुले। अब ऐसे पिता की हम संतान है। तो 3 दिन के बाद 21 जनवरी को बाबा, सब बच्चे तो कहते बाबा अव्यक्त हो गया, बाबा तो कहता था मैं अंत तक रहूंगा, बच्चों को साथ लेके जाऊंगा, अव्यक्त हो गया। फिर बाबा ने आकर के स्वयं शरीर में समझाया बच्चों के, बच्चे मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, अंत तक साथ रहूंगा, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा, केवल मैंने अपना पाठ बदला। और साथ साथ उस समय क्या समझाया कि बाबा ने अपने बिल्कुल अंतिम घड़ियों का वर्णन किया कि बाबा ने कैसे क्या हुआ, कितने थोड़े टाइम में क्या हो गया, इशारा वर्णन किया। तो आपको मालूम हो कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा कलवा दिया था। बाबा कभी भी जो हमारे साथ संबंधित काम होता है हमसे कलवा देता है, ताकि हम कहें कि मैंने कहा था। जैसे मुझे अपनी जॉब सर्विस से रिटायर चेंज होकर के फुल टाइम ब्रह्मा कुमार बनना था, तो 1972 में दादियां मेरे से बात कर रही थी कि ब्रिज मोहन तुम अपनी नौकरी को दिल्ली में ट्रांसफर करवा लो, वहां हमने बहुत बड़ा पांडव भवन लिया है, कोई भाई चाहिए। तो मेरे से ही बाबा ने कलवा दिया। बड़ी लंबी बात है शॉर्ट में कि बहन जी मैंने 17 साल नौकरी कर ली, आप कहो तो मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि फिर मैं सारा टाइम सेवा करूंगा, नहीं तो मुझे नौकरी में जाना पड़ेगा। सेंटर में आए, काम किया, वहां तो संस्था का, हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर है, ज्यादा काम है, दूर है ऑफिस, तो मैं आपके किस काम का आया। स्नान किया, खाया, सोए, मुरली सुनी और चले गए। तो मेरे से कलवाया। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा ने कलवा दिया कुछ टाइम पहले कि सबसे अच्छा तरीका शरीर छोड़ने का हार्ट अटैक है, बताओ। मुरली में कह दिया। बाद में आप हम लोग सोचते हैं कि अरे बाबा ने तो ये कहा था सबसे अच्छा तरीका कि थोड़ा सा कुछ होता है शरीर छूट जाता है। अच्छा हुआ भी ऐसा ही। तो बाबा ने जो अंतिम घड़ियां बताई हैं वो हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। क्या बताया बाबा ने? तो बाबा हमेशा सुनाते हैं, आप सबने सुना हुआ होगा कि कर्म भोग और कर्म योग दोनों की युद्ध चली थोड़े समय के लिए, और कर्म योग ने कर्म भोग पर विजय पा ली। अब बाबा व्यक्त हो गए। कैसे? तो हाथ में थोड़ा पेन हुआ तो जरूर संघर्ष चला। तो फिर बाबा ने बताया है उस समय अंतिम समय मेरी क्या स्थिति थी, और हम सबकी वही स्थिति होनी है। तो उस बात को आप दोबारा रिवाइज करते हैं, वो क्या स्थिति थी? तो बाबा कहते हैं उसमें एक तो आप समझते हो कि बाबा का बच्चों से प्यार नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा बाबा आदि पिता जिसने इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रचना की, और अचानक, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं हर एक का पेपर अचानक आएगा और पेपर वही होता है जो अचानक आए, तो अचानक शिव बाबा ने उनका पाठ बदलना था रामानुसार। वैसे तो उसके कई कारण बताता है बाबा कि अगर मैं अव्यक्त ना हूं, सूर्य पीछे ना जाए तो सितारे कैसे चमकेंगे। इसी प्रकार से केवल पहली राजगद्दी थोड़ी है, सतयुग में, सतयुग त्रेता में अनेक गद्दियां चलनी है, तो बच्चों को भी सीखना है राजाई कैसे चलाई जाती है। बाबा ने बच्चों को बड़े किया है, बड़ा बच्चा बाप के समान होता है, और आपको स्टेज पर लाने के लिए, बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए फादर सो सन बहुत कुछ है। लेकिन उस घड़ी में क्या हुआ, तो बाबा कहते हैं एक तरफ बाबा का बच्चों से अति प्यार, कि जिन बच्चों को बाबा पाल करके तैयार करके, पालना दे करके, अलौकिक पालना दे करके तैयार कर रहा है, अभी स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है, और ये ड्रामा में पार्ट आ गया कि तुमने इस शरीर को त्यागना है, तो एक तरफ अति स्नेह। इसी प्रकार से हम सब जब शरीर छोड़ते हैं, आप देखते हैं कोई शरीर छोड़ रहा है, उस समय उसके सामने क्या आता है, तो लोग तो कह रहे होते हैं इसको बचाओ, ऐसे करो, ये करो, डॉक्टर को बुलाओ, इंजेक्शन लगाओ, और वो आत्मा ऐसे पड़ी होती है, क्या हो रहा होता है उसके आगे। तो बाबा कहते हैं उसके आगे उसके सारी रील चल रही होती है कि इस जन्म में तूने क्या 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 किया, और उसके अनुसार उसको, जिसको कहते हैं ना, किसी को कष्ट होता है, किसी को पश्चाताप होता है, किसी को दुख होता है, खास तौर पे जिसको बाबा कहते हैं अटैचमेंट, वो छूटने का मौका होता है। अब भक्ति मार्ग में तो बाद में मटका फोड़ देते हैं, तिनका तोड़ देते हैं, लेकिन लास्ट पुरुषार्थ क्या है, जिसको गीता में भी, जो बाद में यादगार गीता बनती है, उसका भी लास्ट 18वें अध्याय का लास्ट श्लोक वही है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो उस समय मोह तो विकार है, तो मोह तो अज्ञानियों को होता है, लेकिन शुद्ध स्नेह ब्रह्मा बाबा को कितना होगा। तो बाबा बताते हैं आकर के, ये देखो उस समय आवश्यकता थी समेटने की शक्ति की, नोट कर लीजिए, समेटने की शक्ति की, कि ब्रह्मा बाबा के पास अथाह शक्ति जो ब्रह्मा बाबा ने एकत्रित की थी, वो उस समय काम आई कि सब कुछ को समेट करके समेट करके समेट करके बिंदु रूप में ले आए। तो बाबा कहते हैं बड़ी ताकत चाहिए कि आपका इतना बड़ा विस्तार है, इतना बड़ा चक्र है सहारे का, प्रवृत्ति का, शुद्ध प्रवृत्ति का, उसको समेटते समेटते छोटा करते करते बिंदु में ले आए, क्योंकि बिंदु का विस्तार ही चक्र बन जाता है। तो हर प्रकार के शुद्ध संकल्पों को भी बाबा ने सोचा क्या, अरे अभी तो यज्ञ शुरू हुआ है, अभी तो विदेशों में सेंटर ही नहीं खुले हैं, मेरे बच्चे दूर दूर हैं, सब मेरे से मिलना चाहते हैं, मैं अव्यक्त हो जाऊंगा तो बच्चों के मन में क्या गुजरेगा, नहीं, हर चीज को समेट करके समा लिया। तो समेटने की शक्ति अथा और समाने की शक्ति अथा, एक तो ये, दूसरा जो कर्म भोग जोर से आ रहा है लास्ट मोमेंट में क्या होता है, अति और अंत, अति के बाद ही इति होती है ना। तो उस वक्त सारा कुछ जो भी हिसाब किताब बचा हुआ है, ब्रह्मा बाबा को तो पास विद ऑनर ही होना है, तो जो हिसाब किताब जरा सा बचा हुआ है, हमारी दादियां भी अपना देखो हिसाब किताब चुक तू कर रही हैं, बाबा कहते हैं थोड़ा बचा हुआ भी यहां से लेके नहीं जाना है, पास विद ऑनर करना है। और बाबा ने ये भी कहा हुआ, दो तीन चार दिन पहले मुरली आई थी, कि बच्चों का पिछले कर्मों का हिसाब सूली की तरह है, अर्थात इतना दुख देने वाला जैसे किसी को फांसी लगे, लेकिन बाबा के स्नेह में और अशरीरी बने में उसको कांटा बना देते हैं, छोटा सा ऐसे कांटा चुभा छुट्टी। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन और उसकी अंतिम घड़ी यही बताती है कि अंत में सामना करने की शक्ति, एक हुई समेटने की शक्ति, वो एक साइड की और समाने की शक्ति के सारे विस्तार को समाकर बिल्कुल न्यारा, एकदम साखी के किसी बात में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सो एक संकल्प भी नहीं है, जाना है तो जाना है, वो शक्ति चाहिए। और दूसरी तरफ कर्म भोग जोर से आ रहा है, उसको भी सामना करके उसको जीतना। तो ये दो कर्तव्य बाबा ने अंतिम घड़ी में किए। अच्छा, हमने सुना, हमने पढ़ा, बाबा ने हमें अव्यक्त कोर्स कराया, उसमें भी सुना, फिर बाबा ने हमें रिवाइज कोर्स कराया बहुत वर्षों तक, वो भी सुना, फिर बाबा ने हमें टाइम दिया रियलाइजेशन करने के लिए। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है, पहले पढ़ाते हैं पूरा कोर्स, फिर प्रोफेसर या टीचर रिवाइज कराता है, फिर छुट्टियों दे देते हैं एग्जामिनेशन से पहले, जिसको कहते हैं प्रेपरेटरी लीव, या बच्चा तुमने जो पढ़ा है उसको अच्छी तरह से आत्मसार करो। तो रियलाइजेशन कोर्स अब हमारा चल रहा है, और हमारी परीक्षा एक दिन नहीं आनी, अंत में तो कठी आएगी, किसी की भी कभी कभी आ सकती है। अब उस समय में मैं कहूं कि बाबा के अंतिम पुरुषार्थ में समेटने की इतनी शक्ति, फिर समाने की शक्ति, फिर सामना करने की शक्ति, तो अंत में नहीं आती है। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, कोई बच्चा ये समझे कि मैं अंत में कर लूंगा, बाबा कहता ना कि बच्चों के अंदर कई प्रकार के बच्चे हैं, कोई कहते हैं करना ही है ना, बाबा हमारे साथ है, बाबा आप ही करवा देगा, हम कर भी रहे हैं, बस अंत में तो हम सब कुछ त्याग करके बस बाबा के बन जाएंगे। हर एक के मन में ऐसा संकल्प आता है। और फिर पूछते क्या है, फिर बड़े रॉयल ढंग से पूछते हैं। आज भी मैं ऊपर विदेशियों की क्लास कराने गया था, तो एक विदेशी रॉयल ढंग से पूछ रहा था कि हम कैसे जाने परिवर्तन पूरा कब होगा, क्या हम दुनिया की हालत देख के जाने या हम ब्राह्मण परिवार की देख करके जाने, कैसे पूरा। तो मैंने कहा आप ये जानना ही क्यों चाहते हैं, क्योंकि अंतिम प्रसारत या अंतिम स्थिति का आधार तो एक दिन या दो दिन नहीं है, अंतिम स्थिति का आधार हमारी सारी पढ़ाई पर। ये हमको खास नोट करना है कि ब्रह्मा बाबा जी का अंतिम पुरुषार्थ और मेरा भी अंतिम पुरुषार्थ वैसा ही हो जाए बाप के समान, कम से कम नियर अबाउट तो हो जाए, तभी हम बाबा के बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो स्थिति जब आएगी जब हमने सारा पीरियड अपने ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री में सारी हमारी रेखाएं शुरू से अंत तक क्या रही। तो इसके लिए फिर बाबा कहते हैं, देखो सब जानते हैं, अगर ब्राह्मण से पूछा जाए भाई कैसा चल रहे हो, ठीक चल रहे हो, बाबा पूछे, या ब्राह्मण भी दूसरों से यही पूछते हैं कि ठीक चल रहा है, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान है, कोई ब्राह्मण नहीं कह सकता ठीक नहीं चल रहा, ठीक चल रहा है। फिर क्या कहते हैं, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं ना वैसा नहीं चल रहा। अब इसमें मार्जिन है, जैसा मैं चाहता हूं, मैं ही चाहता हूं, मेरा ही चल नहीं रहा, तो क्या मतलब हुआ, मैं मजबूर हूं या मजबूत हूं। मैंने तैयारी की हुई है पूरी तरह से, या कि मैं डिपेंड कर रहा हूं, तो ये अक्षर ही बताते हैं फर्क है। तो फिर बाबा से कहते हैं बाबा बात सच्ची ये है, मेरे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, ये दूसरी बात आ जाती है। अब हमने देखना है कि ब्रह्मा बाबा का तो हर एक संकल्प समर्थ था, और उनके दिवस को ही हम समर्थि दिवस कह के मनाते हैं, कि जब बाबा की स्मृति आती है तो समर्थि आती है अपने अंदर। क्यों आती है, अकेला बाबा 1936 में कौन था कि तुमने सारी नई दुनिया की स्थापना करनी और तुमने करनी है, और बाबा को साक्षात्कार भी करा दिया कि ये देखो सितारा गिरता है राजकुमार बन जाता है, राजकुमारी बन जाता है। अब बाबा ने सितारों के ऊपर मुरली भी चलाई है, अभी रिसेंटली चलाई है, कि पृथ्वी में भी तुम स्टार हो, तुमको धरती के सितारे भी कहते हैं और तुम लकी स्टार हो, क्योंकि बाबा के बच्चों के अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं मिलता, कितने भाग्यशाली हो। तो उस वक्त बाबा को दिखाया कि देखो सितारा धरती पर आया, राजकुमार राजकुमार अकेला, और मैंने तुमको माध्यम बनाया है, मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करके निजाहम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम कह रहा हूं। उस दिन से लेकर किसी, हम तो अभी बहुत बड़ा संगठन है, जब हम ज्ञान में आए थे 1953-54 में तो लोग मजाक करते थे, बैज लगाने पे हंसते थे, कहते थे तुम लोग पागल हो गए हो, हमें कोई मकान नहीं देता था, मकान डबल किराए पर लो तो महीने बाद कहता था खाली कर दो, कि यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, हम एक परिवार को देंगे, आदि आदि कितने ऑपोजिशन हुए। आज तो ब्रह्मा कुमारी नाम फखर से लेते हैं, हमारा स्टिकर टैक्सी वाले जानबूझ के लगा लेते हैं खरीद कर, सोचो। और आज तो हमारा रूप ही अलग है, आज एक ब्राह्मण में इतनी शक्ति है कि चारों तरफ का वातावरण ही उसको टाइट रखता है। एक बीके बैज लगाकर सफेद वस्त्र पहनकर कोर्ट में खड़ा जाएगा ना किसी काम से, क्या कहेंगे आप यहाँ आप कोर्ट में, इतनी शक्ति है। अगर कोई बीके किसी गलत जगह खड़ा हो, जैसे सिनेमा घर के बाहर से खड़ा हो, साधु को नहीं कहेंगे तो सिनेमा देखने क्यों जा रहा है, बीके को अरे आप यहाँ, अरे आप यहाँ। अच्छा साधु लोग आप देखते हैं सिगरेट पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, कोई नहीं कहेगा महात्मा जी आप क्या कर रहे हो, उनको पता है कि ये कलयुग है। लेकिन कोई बीके किसी ऐसी जगह के पास एक्सीडेंटली भी खड़ा हो तो कितनी शक्ति है। और अब तो सारी दुनिया के लोग, कौन ऐसा है जो वर्णन नहीं करता, चाहे वो राजनीतिक नेता हो कोई महात्मा हो, अभी कुंभ लगा हुआ है, महात्मा लोग खुद आके बहनों को कह रहे हैं आपको प्रणाम, आपकी पवित्रता को प्रणाम, आपकी दिव्यता को प्रणाम, हम तो ये नहीं कर सके आप लोग कर रहे हो, कहते हैं ना। लेकिन वो अकेला, तो जरूर ऐसी समर्थी थ्रू आउट धारण रखी जिसके बाबा के बच्चे साथ जुड़ते गए जुड़ते गए, तो ब्रह्मा की कहते हैं हजारों भुजाएं थी, अब तो हम हैं। तो अब हर एक भुजा को देखना यह है, हर एक भुजा को बाबा कहते हैं मेरी भुजाएं हैं, उसमें भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, क्योंकि बाबा कहते हैं नंबर तो माला में ही भी हैं, आठ की माला भी बिल्कुल जो टॉप क्लास है जुड़ी हुई है धागे से, एक मन के दूसरे में फर्क नहीं पता लगता, फिर भी नंबर तो है 1 और 8 में, 108 में भी नंबर है। तो बाबा कहते हैं ये जो नंबर है मेरी भुजाओं में, तो मोटे रूप से क्या तुम मेरे राइट हैंड हो, तो बाबा हमेशा कहता है ये बच्चा मेरा राइट हैंड है, क्योंकि भारत के अंदर आप देखते हैं कि राइट हैंड को शुद्ध गिना जाता है, है? इसको जमनी बाजू कहा जाता है, मतलब भोजन करने का हाथ, इतना शुद्ध इसको रखा जाता है, तो इसका यादगार है ये, तो ऐसे कहते हैं, लेकिन राइट हैंड शक्तिशाली भी होता है। तो उसके लिए हमको भी के व्यर्थ संकल्प का नाम निशान ना हो, खास तौर पे अंतिम समय पर। अब वो कैसे होगा, ब्रह्मा बाबा में तो था ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को दिन रात 24 घंटे, रात को भी बाबा जाग के जाओ तो बाबा जगा हुआ है, बाबा कहता बच्चे बाबा को तो ख्यालात चल रहे हैं, इतनी सारी दुनिया है, इतने दुखी लोग हैं, बच्चे दुखी हैं, माताएं दुखी हैं, लोग जुल्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, इज्जत लूट रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए दुखी लोग चले जाते, कौन पूछता उनको, किसके पास जाएं, अर्थ को ये कहा जाता है। तो इनको बाबा ने इस दुनिया को ठीक करना है, तत्वों को ठीक करना है, फिर बच्चे दूसरी कैटेगरी भगत लोग हैं, मेरे को ढूंढ रहे हैं, कोई सर्वव्यापी कह रहा है, कोई कह रहा है मैं भगवान हूँ, कोई कुछ, इनको भी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, सर जो टोल रहे हैं, कोई यहाँ ताली बजाता है तो उधर को चल पड़ते हैं, कोई प्राप्ति का लालच दे रहा है, कोई रिद्धि सिद्धि करवा रहा है, तेरे पैसे डबल कर दूंगा, तेरा रोग ठीक कर दूंगा, मुझे क्या दोगे। तो बाबा कहते हैं सब जानते हो, इन सब को अगर अकेला ब्रह्मा बाबा योग की शक्ति से और अपने दृढ़ संकल्प की शक्ति से, इस हॉल को आप देखें सजा हुआ है, अगर सारे भारत के बीके यहाँ इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा, टर्न लगाता। वर्ल्ड को देखो कि सारे विश्व में बाबा ने दीप जगा दिए हैं। जैसे एक्सरे देखी जाती है, अगर आप सारी दुनिया में अंधकार कर दो और देखो कि सितारे कहाँ चमक रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि बाबा के बच्चों की रिमझिम कैसे लगी हुई है। तो अब बाबा कहता है कि वो स्थिति आपको कैसे धारण करो, तो बाबा कहता है मुझे फॉलो करो। व्यर्थ संकल्पों को रोकने का बेस्ट तरीका क्या है, आपको पता है, स्कूल में पढ़ाते थे, एन आइडल मैन्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का डेरा, पढ़ाते थे स्कूल में। आप देख लो व्यर्थ संकल्प आपको कब आते हैं, जब मन खाली होगा। अच्छा, व्यर्थ संकल्पों की जड़ है निश्चय की परसेंटेज। बाबा हमेशा कहता है निश्चय है तो निश्चिंत है, तो निश्चित है, ठीक है। अब निश्चय, हम सबको निश्चय है, अगर हमको निश्चय ना हो हम यहाँ कैसे हो, लेकिन निश्चय की परसेंटेज, निश्चय का टेस्ट होता है। तो जब हमारी कोई परीक्षा की घड़ी आती है, मान लो शरीर को रोग आ गया, डॉक्टर ने कह दिया भाई तुम्हें तो कैंसर है, अच्छा उस स्थिति में सुनते ही क्या हाल होता है, अरे कैंसर, तो बुद्धि के व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहता है एक है प्रकृति के द्वारा आई हुई कर्मों के हिसाब से परिस्थिति, और एक है उस परिस्थिति में व्यर्थ संकल्प चलाना। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रकृति जीत, इसका मतलब क्या होता है, प्रकृति द्वारा आई हुई कोई भी आपदा हो वो उसको डिटैच होकर के शक्ति से उसके ऊपर राज करके काम करना। तो जब ब्रह्मा कहते हैं कि अंत में योग बल ने कर्म भोग पर विजय पाई, कर्म योग ने कर्म भोग, तो उसका ये अर्थ है। तो वो स्टेज एक दिन में नहीं बन गई, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, वो स्टेज बाबा के वर्षों की त्याग तपस्या और सेवा से बनी। अब हम सब भी त्याग तपस्या सेवा वाले हैं। तो बाबा कहते हैं एक तो बिजी रहो, बिजी किस में रहो, हम ब्राह्मणों से ज्यादा वीआईपी कोई है नहीं, हमको इतने काम है, इतने काम है, इतने काम है कि किसी को दुनिया में हो नहीं सकते। एक तो सो पुरुषार्थ करो, पिछले कर्म विनाश करो। बाबा कहते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा आत्माओं की सेवा करो, सामने वाले के भी करो, मनसा से भी करो, तत्वों को शुद्ध करो, हमारे पास टाइम है क्या। तब बाबा कहता है कि त्याग तपस्या सेवा की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, त्याग तो हम सबने किया है, चाहे हम प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे हम सेंटरों में रहते हैं, दुनिया का तो त्याग किया है। लेकिन बाबा कहता है एक त्याग नहीं किया है जो बाकी सब त्याग को जीरो कर देता, वो त्याग अगर हम करेंगे जो ब्रह्मा बाबा ने किया था तो हमारे बाकी त्याग का भी मूल्य होगा। जैसे कहते हैं ना कि बहुत मेहनत करे, बहुत मेहनत करे, लेकिन बस मंजिल से थोड़ा नीचे रह जाए तो उस मेहनत का कोई वैल्यू तो नहीं होगा ना। मान लो आपने लॉटरी डाली, कहते हैं कि बाबा कहते हैं तुमको तो सबसे बड़ी लॉटरी मैंने दी है, हमसे बड़ी लॉटरी तो ऐसी दुनिया में कोई लॉटरी नहीं निकली कि आप जरा सा डालो और आपको 21 जन्म के लिए इतनी प्राप्ति हो जाए, तन मन धन आयु संपत्ति सब मिल जाए। अब लॉटरी में अगर 10 नंबर की लॉटरी है और आपके 9 नंबर लॉटरी के मिल जाए और एक नंबर ना मिले तो क्या होगा, आपको कितना ख्याल आएगा। और अगर 3 प्राइज के बाद नंबर मिले तो कोई फायदा नहीं, आपके 7 नंबर मिल गए कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार से हमारा जो त्याग है उसमें एक कमी है, और बाबा ने सब बच्चों को बताया हुआ है, वो कमी है मैंपन। मैं, अरे हम कौन, करण करावन हार वो, मम्मा का स्लोगन था हुक्म ही हुक्म कराए रहा, तो बाबा करवा रहे हम कर रहे हैं, गीत भी बजे हुए हैं, कराने वाला करा रहा है, हम किए जा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब तो अच्छा हो जाता है तो मैंने किया, सेवा अच्छी हो गई, कहीं सहयोग दे दिया, देखो मैं इतना सहयोग दे रहा हूं, देखो मैंने इसको ज्ञान सुनाया, स्टूडेंट कितना अच्छा आ गया। ये जो मैं है ये हमारे उसको जैसे लूडो होता है ना, सीढ़ी चढ़ो आगे सांप बैठा है फिर नीचे, वो हमें जीरो कर देता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा के त्याग और हमारे त्याग में इतना ही फर्क है कि हम मैं को उड़ा दें। अब रह गई बात तपस्या की। तपस्या क्या है? हम लोग उस प्रकार के हठ योगी तो है नहीं, वो सिर के बल खड़े होते हैं। बाबा कहते हैं कीप योर हेड इन बैलेंस, नॉट बैलेंस योर बॉडी ऑन योर हेड। गीता में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा, हम लोटस पोज पद्म आसन लगाते हैं तो बाबा कहते हैं गीता में तो कहीं नहीं लिखा हुआ पद्म आसन लगाओ, कमल फूल समान जीवन जरूर कहा है। उनकी बात तो छोड़ दो हठ योगियों की, लेकिन तपस्या क्या है? हमारी तपस्या एक ही है कि निरंतर शिव बाबा को याद करना। है बड़ी आसान, है बड़ी मुश्किल, सूक्ष्म है। अब हमने देखना है कि ब्रह्मा बाबा की तपस्या, कि ब्रह्मा बाबा खुद सुना रहे हैं कि मैं भोजन करता हूं, करते करते बाबा भूल जाता। अब देखो खुद सुना रहे हैं, सच्चाई से ईमानदारी से अपना वर्णन कर रहे हैं कि बच्चे भी समझें कि ये तपस्या बड़ी कठिन है, कि हर समय हर परिस्थिति में, और इसका कनेक्शन त्याग से है। जब हम मैं कह देंगे तो शिव बाबा याद रहेगा, फिर तो मैं याद रहेगा या मेरा याद रहेगा, ये तो दुनिया भी वो कर रही है। इसलिए तपस्या, हर समय शिव बाबा याद रहे। आपके पास संकल्प, वेस्ट संकल्प के लिए टाइम है नहीं, जरूर विस्मृति है। इसीलिए बाबा कहते हैं स्मृति दिवस, स्मृति दिवस है कि मुझे मेरी स्मृति करोगे तो मेरी सब जो जो मैंने जीवन में किया, क्योंकि बाबा साकार था, बाबा हमारी तरह था, बाबा परिवार वाला था। बाबा कहते हैं आपके आगे कोई परिस्थिति आती नहीं जो मेरे से क्रॉस ना की हो, हर बच्चा प्रोटेक्टेड है। बाबा कहते हैं आपको कोई भी कुछ आएगा तो मेरे से क्रॉस करके आएगा, लेकिन तुम्हारा कनेक्शन मेरे से हुआ होना चाहिए। अगर कनेक्शन ही टूटा हुआ तो आपका गला पकड़ लेगा। तो क्या हुआ? तपस्या तो मैंने हर वक्त याद, त्याग मैंने मैं का त्याग, अब आ गई सेवा। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा अपनी सेवा है। आप अपने ऊपर अटेंशन रखिए, बाकी आप ही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरों की सेवा करने में भाग के करते हैं, क्योंकि सेवा का सब्जेक्ट तुरंत फल देने वाला है। सेवा करोगे मेवा खाओगे, यहाँ कोई किचन में सब्जी कटवा दे मान लो, कितनी खुशी होती है। सब्जी कटवाने, अरे हम भगवान के घर भगवान के बच्चों के लिए बेहद के यज्ञ में सब्जी बाबा की, चाकू बाबा का सिर्फ मैं काट रहा हूँ, तो कितना फायदा है आप सोचो है? तो इसलिए बाबा कहता है करवा मैं ही रहा हूं, लेकिन उस भावना से काटे। जैसे भक्ति में हम मंदिरों में झाड़ू लगाते थे, अरे मंदिरों की टाइलें दबाते थे कि भगवान को टांगे दबा रहा हूं, मंदिर की टाइल को दबाते थे, इतनी भावना थी। तो ज्ञान में आकर ज्ञान से कभी कभी भावना घट जाती है। तो बाबा कहता वो भावना साथ रखेंगे, अपनी सेवा कर ले तो सेवा है। इसलिए कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मा बाबा जी की जीवन में, अगर निराकार के तो हम फॉलो नहीं कर सकते, भगवान तो भगवान है, बाबा कभी नहीं कहता तो शिव बाबा को फॉलो करो, लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो कर सकते हैं। गीता में ही लिखा हुआ है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, गीता में ही लिखा हुआ है कि हे मेरे कृष्ण जी, मेरे सखा, मैं तो तुमको सखा समझता था पर तुम तो भगवान हो, साधारण तन में आए हुए मुझ परमात्मा को मनुष्य पहचानते नहीं है, मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है, वो लिखा हुआ है। पर हमारे साथ तो रोज घटता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि केवल उनको फॉलो कर लें। बाबा ने इस परिस्थिति में क्या किया? मैं दादी प्रकाश मणि जी से पूछता था कि दादी जी आप जो डिसीजन लेती हैं, फैसला करती हैं, कैसे करती हैं? कोई कोई लेके आता अपनी समस्या परिस्थिति, तो दादी कहती थी मैं कुछ नहीं करती। मैंने कहा आखिर आप फैसला देती हैं? और यहाँ तो वंडर था कि कोई व्यक्ति दादी के पास जाके फैसला ले, फिर दोबारा जाके दीदी के, तो दोनों का फैसला एक होता था, कभी चेंज नहीं हुआ। कई होते हैं ना कि दादी ने नहीं किया तो दीदी से करवा लो ना, क्यों? वो कहती थी हम क्या करते हैं, कोई परिस्थिति आती है तो बाबा ने इसमें क्या किया था। बस बाबा ने इसमें क्या किया देखते हैं और काम ठीक हो जाता है। और बाबा के अंदर देखो दृढ़ता और बाबा के अंदर निर्भयता कितनी थी। आ गए एक बारी बाबा ने मुरली में बोल दिया कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं ना, उनकी शक्ल चीनियों जैसी होती है। तो लड़ाई हो रही थी भारत और चाइना की, तो बाबा ने कहा ऐसे थोड़ा सा उनको उनका टुकड़ा दे दो, क्यों अपने फौज को मरवाते हैं भारतवासी, ये तो कलयुग है। किसी ने बाबा की मुरली पढ़ ली गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट ने ऑफिसर भेज दिए यहाँ पर कि ये कौन है जो कह रहा है कि भारत का हिस्सा उसको दे दो, ये तो बड़ा खराब चीज गिनी जाती है गवर्नमेंट में। आ गए तो वहां घंटी लगी हुई है पांडव भवन में, घंटी बजाओ। पूछते किस लिए आए कौन? उन्होंने कहा जी हम गवर्नमेंट के ऑफिसर आए हैं और इंक्वायरी करने आए हैं, किसने ये कहा? तो एक भाई भागा भागा बाबा के, बाबा गवर्नमेंट के अफसर आए। भाई तो भाग रहा है। अच्छा बाबा ने कहा बुलाओ बच्चों को। अब बाबा में बिल्कुल कुछ नहीं है, ऑलमाइटी है, ये कौन है? तो बाबा कहते अथॉरिटी भी बाबा साथ रखता था, सादगी अति और अथॉरिटी भी अति। बाबा का टॉयलेट टाट पट्टी का बना हुआ होता था जिसको हम बोरी कहते हैं, और लेकिन बाबा की अथॉरिटी। आ गए तो बाबा तो बच्चे ही कहता था हर एक को, हाँ बोलो बच्चे। पहले तो हैरान, वाइब्रेशन इतना पावरफुल, कमरा रोशनी से भरा हुआ है, एक चमकदार शरीर वाला एक बुजुर्ग बैठा है जैसे तांबा चमकता है। तो बाबा पहले तो बोलना ही भूल गए, साधारण मनुष्य और कहां बाबा। फिर धीरे धीरे बोले कि बाबा जी आपने थोड़ा सा ये बोला है ना, तो ऐसा तो वो बोले मैंने कहां बोला है, बोलने वाला बोल गया। अब बाबा कह रहा है कि मैंने थोड़ी बोला, तो श्री बाबा बोल गया। तो बाबा ने ये तो नहीं कुछ नहीं सीधा कहा। अब वो बेचारे और घबरा गए। फिर बोले अच्छा बाबा जी जो बोल गया है ना उसको आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर देना, बताओ कि बताओ। तो शक्ति है, बाबा के होते कभी हमारे पास इनकम टैक्स वाले नहीं आए। आए तो बाबा के पास आए, बच्चे बाप को ही टैक्स लगाते हो? वो चले जाते थे हाथ जोड़ के। ये तो बाबा के जाने के बाद हम बच्चों के हाथ में आया काम, तो इस तरह के लोग आते हैं। अभी भी बाबा कहता है ब्राह्मणों को लोग ऑफर करेंगे, अभी तो करते हैं ना। पहले तो कन्या कोई ले ले तो कितना शोर मचाते थे, अब कन्या के साथ उसका दहेज ऑफर करते हैं, हमारी कन्या को ब्रह्मा कुमारी बना लो, मकान ऑफर करते हैं, पहले थोड़ी ऐसे था। तो बाबा कहता है कि ब्राह्मणों की इतनी शक्ति है कि आपको जैसे राजा जो पहले वक्त के राजा थे टैक्स थोड़ी लगाते थे, उनको लोग गिफ्ट देते जाते थे। तो बाबा कहता है खुशी से ऑफर करेंगे। अब दादी जी का कमरा जाके देखो, जो जोन वाले आएंगे टोली ले आएंगे, बांटना मुश्किल हो जाता। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारी रॉयल्टी है, तो अगर अथॉरिटी में रहेंगे बाबा की तरह तो आपको हर विघ्न आपका मेल्ट हो जाएगा। अथॉरिटी छोड़ेंगे समस्या देखेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, जैसे सांप खड़ा हो जाता, नहीं तो वो चली जाएगी। तो इस प्रकार के हमारे बाबा, हमको कितना फख्र है कि सारी दुनिया की आत्माएं, सारी दुनिया में कितनी आत्माएं इस वक्त अंदाजे से कहते हैं जी 700 करोड़ है, ठीक है। और सारी दुनिया में ब्राह्मण कितने हैं इस वक्त? तो बाबा कहता है देख लो, जितनी सतयुग की आदमी संख्या आनी है देवताओं की, उतनी तैयार है, और चेंज हुआ ब्राह्मण देवता बन जाएंगे, बाकी परम धाम चले जाएंगे। तो इतने करोड़ों में से इतने थोड़े जो बाबा के अधिकारी बचे, तो कितना नशा रहना चाहिए। अरे हम इस दुनिया का तो हम लेते ही नहीं, इस दुनिया का तो ताज मिल जाए आपको तो प्रॉब्लम है, लेकिन उस दुनिया में बाबा ने कहा ना इंश्योर तुम वहां कराते हो, तो बड़े होशियार बच्चे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मैंने ही तुमको होशियार बनाया है, अपने भाग्य पर सदा नाज करके नशे में रहो, मस्ती में रहो, बाकी मेरा काम है, कोई बोझ भी आए तो मुझे दे दो, और क्या चाहिए। बाबा कहता है तुम्हारे पर कोई बोझ लेने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं बोझ लेने के लिए, लेकिन हम उस किसान की तरह हैं जो किसान रोज पैदल सिर पे गठड़ा रख के जाया करता था, और रेलवे लाइन आ गई तो किसी ने कहा पैदल क्यों जाता है, रेलवे में जा, रेलवे तो तेज चलती है, बैठ गया लेकिन गठड़ा सिर पर ही रखा। तो ये बाबा कहता है ये नहीं करना। ओम शांति।
के सिवाय